जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदमी है जो रोम की एक बेहद खौफनाक और अंधेरे जगह में नजरबंद है। बाहर कड़े पहरेदार खड़े हैं।
हाँ, और उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी भी दिन, मतलब किसी भी पल, उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती है। उसका पूरा भविष्य एकदम अंधकार में है।
बिल्कुल, और इस खौफनाक अनिश्चितता के बीच बैठकर वो आदमी एक खत लिख रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये खत किसी मदद की गुहार के लिए नहीं है, ना ही इसमें किसी से कोई शिकायत है या अपनी किस्मत का रोना है।
सही कहा, बल्कि ये खत इस बारे में है कि खुश कैसे रहें। मतलब ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।
ये तो है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद इसी रहस्य को डिकोड करना है। हम डॉक्टर मैथ्यू एस हार्मन के उस बेहतरीन विश्लेषण पर बात करने वाले हैं जो उन्होंने फिलिपियों के नाम पत्र यानी फिलिपियंस पर दिया है।
और डॉक्टर हार्मन इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। आमतौर पर हमारा मानवीय स्वभाव ये मानता है कि खुशी का सीधा संबंध हमारी बाहरी परिस्थितियों से है, जैसे सब कुछ सही चल रहा हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, सुरक्षा हो।
हाँ, मतलब कोई तनाव ना हो।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक कैदी जो खुद मौत के साए में बैठा है, वो उन लोगों को आनंद का पाठ पढ़ा रहा है जो बाहर आजाद घूम रहे हैं।
और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस ऐतिहासिक दस्तावेज में क्या लिखा है, बल्कि ये समझेंगे कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति अपनी सबसे बुरी स्थिति में भी जीवन का इतना गहरा अर्थ खोज सकता है।
इस पूरी कहानी और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने के लिए ना, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दुनिया में जहाँ ये सब असल में घटित हो रहा था।
हाँ, मतलब हमें उस समय का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है।
एकदम सही, डॉक्टर हार्मन इसे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना का हिस्सा मानते हैं। ये वो समय था जब जीसस के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की घटनाएं हो चुकी थीं, और उस वक्त ईसाई धर्म एक बिल्कुल नए विचार के रूप में दुनिया में अपनी जगह बना रहा था।
और यहाँ एक बात ने मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर किया। मतलब आज जब हम इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे हाथ में एक पूरी की पूरी छपी हुई किताब होती है।
हाँ, शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ तय होता है।
बिल्कुल, लेकिन उस समय फिलिप्पी के लोगों के पास आज की तरह कोई संपूर्ण लिखित ग्रंथ नहीं था। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे कोई एक बेहद रोमांचक सस्पेंस थ्रिलर किताब पढ़ रहा हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कहानी का अंत क्या होगा।
अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है,
क्योंकि आखिरी के पन्ने अभी तक लिखे ही नहीं गए हैं। वो लोग तो बस इंतजार कर रहे थे।
हाँ, वो लोग शाब्दिक अर्थों में इतिहास के उस पन्ने पर जी रहे थे जो अभी उनके सामने लिखा ही जा रहा था। उनके पास कोई फाइनल दस्तावेज नहीं था, वो केवल मौखिक कहानियों, शिक्षाओं और पॉल जैसे नेताओं द्वारा समय समय पर भेजे गए पत्रों पर निर्भर थे।
मतलब उनका रोजमर्रा का जीवन भारी अनिश्चितताओं से भरा था।
बिल्कुल, और वो जीसस की वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब आपके पास सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ ना हो, तो आपको हर दिन अपने साझा मूल्यों और एक दूसरे के प्रति भरोसे के सहारे जीना पड़ता है।
और मुझे लग रहा है कि यही अनिश्चितता शायद उनके विश्वास को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाती है।
एकदम सही कहा आपने, जब नियम पुस्तिका पूरी ना हो तो आपको उस विचार की मूल भावना को ही अपना जीवन बनाना पड़ता है। वो लोग सिर्फ एक नया धर्म नहीं अपना रहे थे, वो खुद को उस बड़ी ऐतिहासिक कहानी का हिस्सा मान रहे थे जो उनके सामने आकार ले रही थी।
और इस पूरी बड़ी कहानी में पॉल की भूमिका बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि पॉल का फिलिप्पी शहर जाने का कभी कोई इरादा ही नहीं था।
हाँ, ये बहुत ही अजीब मोड़ था। वो तो अपनी टीम के साथ किसी और दिशा में जाकर अपना संदेश फैलाना चाहते थे।
तो फिर वो वहां पहुंचे कैसे?
दस्तावेज बताते हैं कि ईश्वर की आत्मा ने उन्हें बार बार अन्य रास्तों पर जाने से रोक दिया। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो पूरी लगन से अपना काम करना चाहता है, लेकिन उसे हर तरफ से बस बंद दरवाजे मिल रहे हैं।
ये तो मानसिक रूप से कितना हताश करने वाला रहा होगा। इंसान दिशाहीन महसूस करने लगता है।
बिल्कुल, लेकिन अंततः उन्हें एक तरह का आध्यात्मिक संकेत मिलता है जो उन्हें मैसेडोनिया की तरफ ले जाता है, और इस तरह ये संदेश पहली बार आधुनिक यूरोप की जमीन पर पहुंचता है।
और उसी इलाके का एक प्रमुख शहर था फिलिपी। डॉक्टर हार्मन ने इस शहर की जो तस्वीर पेश की है वो सच में बहुत दिलचस्प है।
हाँ, ये एक बहुत ही हलचल भरा शहर था।
मतलब लगभग 10 से 15 हजार की आबादी वाला एक शहर जो एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इसे तो रोम का एक छोटा संस्करण यानी मिनी रोम भी कहा जाता था ना?
बिल्कुल, यहाँ बड़े बड़े सैन्य दिग्गज रहते थे, कई अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, और खुद रोमन सम्राट को भगवान की तरह पूजा जाता था। यहाँ की आधिकारिक भाषा भी लैटिन थी।
लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अजीब लगी वो ये कि इस शहर के सामाजिक ताने बाने को जो चीज सबसे ज्यादा परिभाषित करती थी वो थी रोमन नागरिकता।
हाँ, और हैरानी की बात यह है कि उस शहर में 60% से ज्यादा लोग इस नागरिकता के बिना जी रहे थे।
60%?
हाँ।
मतलब आधे से ज्यादा शहर।
बिल्कुल, और उस दौर में नागरिकता महज कोई आज के जमाने का पहचान पत्र नहीं थी। ये तय करती थी कि समाज में आपकी हैसियत क्या है, आपको कानून से कितनी सुरक्षा मिलेगी और आपके व्यापारिक अधिकार क्या होंगे।
तो जिनके पास ये नहीं थी वो तो हमेशा एक खौफ और असुरक्षा के साए में ही रहते होंगे।
एकदम, और इसी माहौल में पॉल वहां पहुंचते हैं।
रुकिए, यहाँ एक चीज मुझे पूरी तरह से विरोधाभासी लग रही है।
क्या?
पॉल का हमेशा से एक तय तरीका था, वो किसी भी नए शहर में जाते तो सबसे पहले स्थानीय यहूदी प्रार्थना घर यानी सिनेगॉग में जाते थे ताकि वहां के लोगों से चर्चा शुरू कर सकें।
सही बात है।
लेकिन अगर ईश्वर ने पॉल को विशेष रूप से बाकी सारे रास्ते बंद करके फिलिप्पी भेजा था तो ये कितनी अजीब बात है कि वहां पॉल के स्वागत के लिए यहूदियों का कोई प्रार्थना घर तक नहीं था, उन्हें शहर के बाहर एक नदी के किनारे जाना पड़ा।
ये एक बहुत ही बारीक अवलोकन है और इसके पीछे का कारण उस शहर की पूरी जनसांख्यिकी को खोलकर रख देता है।
अच्छा, वो कैसे?
यहूदी नियमों के अनुसार किसी भी शहर में एक आधिकारिक प्रार्थना घर स्थापित करने के लिए कम से कम 10 यहूदी पुरुषों का होना अनिवार्य था। फिलिप्पी में उस प्रार्थना घर का ना होना सीधा सा मतलब ये है कि उस 15,000 की आबादी वाले शहर में 10 यहूदी पुरुष भी नहीं थे।
अरे बाप रे, मतलब वो शहर पूरी तरह से एक गैर यहूदी या कहें जेंटाइल पृष्ठभूमि वाला था। उन लोगों के लिए पॉल का संदेश, उनकी ऐतिहासिक कहानियां, सब कुछ बिल्कुल परग्रही या एलियन विचार जैसा रहा होगा।
बिल्कुल, और इसीलिए जब पॉल उस नदी के किनारे पहुंचे जहां कुछ महिलाएं प्रार्थना के लिए इकट्ठा होती थीं, तो वहीं से एक ऐसे समुदाय की नींव पड़ी जो समाज के हर वर्ग को छूने वाला था।
हाँ, और दस्तावेज बताते हैं कि सबसे पहले उनकी मुलाकात लीडिया से होती है। लीडिया कोई साधारण महिला नहीं थी, वो बैंगनी रंग की बेहद कीमती कपड़े का व्यापार करती थी।
हाँ, पर्पल कपड़ा, ये रंग उस समय रईसी और सत्ता का बहुत बड़ा प्रतीक था।
हाँ, और लीडिया इस नए समुदाय की पहली अनुयायी बनती है और अपने बड़े घर के दरवाजे पॉल और उनकी टीम के लिए खोल देती है।
और इसके ठीक बाद जो होता है वो और भी हैरान करने वाला है। एक तरफ शहर की सबसे अमीर और रसूखदार महिला उनसे जुड़ती है और दूसरी तरफ पॉल का सामना एक ऐसी गुलाम लड़की से होता है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर थी।
मिंट है ना?
बिल्कुल। वो गुलाम लड़की एक रहस्यमयी मानसिक या आध्यात्मिक अवस्था में थी जिसे उस समय बुरी आत्मा का प्रभाव माना जाता था। वो कथित तौर पर भविष्यवाणियां करती थी
और इसके मालिक उसके इस हालत का फायदा उठाकर खूब पैसा छाप रहे थे।
हाँ, जब पॉल ने उस लड़की को उस मानसिक और आध्यात्मिक गुलामी से आजाद किया तो असल में उन्होंने उसके मालिकों के मुनाफे के स्रोत को ही जड़ से खत्म कर दिया।
और यहीं से ये पूरा मामला धर्म से खिसककर सीधे अर्थशास्त्र और राजनीति पर आ जाता है। उन मालिकों ने गुस्से में आकर पॉल और उनके साथी सलास पर ये आरोप नहीं लगाया कि इन्होंने हमारा व्यापार चौपट कर दिया।
नहीं, उन्होंने बहुत चालाकी से बहुसंख्यक आबादी की असुरक्षा और पूर्वाग्रह को भड़काया। उन्होंने कहा, ये अजनबी यहूदी लोग हमारे रोमन शहर में ऐसे नियम ला रहे हैं जो हमारे लिए गैरकानूनी है। बनाना बहुत आसान रहा होगा।
एकदम, अधिकारियों ने बिना कोई जांच पड़ताल किए, बिना कोई मुकदमा चलाए पॉल और सिलास को सरेआम बुरी तरह पीटा और जेल की सबसे सुरक्षित कालकोठरी में डाल दिया। उनके पैर काठ में ठोंक दिए गए।
और यहाँ से ये कहानी सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की तरह लगने लगती है। मतलब रात का समय है, दोनों बुरी तरह जख्मी हैं, दर्द से कराह रहे होंगे, लेकिन वो रोने के बजाय उस अंधेरी जेल में भजन गा रहे थे।
हाँ, और तभी एक भयानक भूकंप आता है।
बिल्कुल, जेल की नींव हिल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं और जंजीरें टूट जाती हैं।
और उस भूकंप से भी बड़ा झटका उस रात उस रोमन जेलर को लगता है, क्योंकि रोमन कानून बहुत क्रूर था। अगर किसी जेलर की ड्यूटी के दौरान कैदी भाग जाए तो जेलर को खुद अपनी जान देनी पड़ती थी।
तो उस जेलर ने जब दरवाजे खुले देखे तो उसे लगा सब भाग गए। उसने अपनी तलवार निकाल ली ताकि आत्महत्या कर सके, लेकिन तभी अंधेरे में से पॉल की आवाज गूंजती है कि रुक जाओ, हम सब यहीं हैं, कोई नहीं भागा।
मुझे लगता है कि ये उस जेलर के लिए एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक झटका रहा होगा। जिन लोगों को उसने जंजीरों में जकड़ा था, जिन्हें बेरहमी से पीटा गया था, उनके पास आजाद होने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने भागने के बजाय अपने ही जालिम की जान बचाई।
ये उस जेलर के जीवन का सबसे परिवर्तनकारी क्षण था। उसने उसी रात अपने पूरे परिवार के साथ पॉल का संदेश अपना लिया, लेकिन सत्ता के साथ उनका ये टकराव यहाँ खत्म नहीं होता।
हाँ, अगली सुबह का ड्रामा तो अभी बाकी था।
बिल्कुल, अगली सुबह जब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो चाहते हैं कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए और पॉल को चुपचाप शहर से बाहर निकाल दिया जाए।
और यहीं पर पॉल अपना तुरुप का इक्का फेंकते हैं। वो खुलासा करते हैं कि वो जन्म से रोमन नागरिक है।
जैसे ही अधिकारियों ने ये सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैं सोच रही थी, बिना मुकदमे के एक रोमन नागरिक को पीटना रोम के कानून के तहत कितना संगीन अपराध था।
बहुत संगीन। इसके लिए उन अधिकारियों की नौकरी तो क्या, उनकी जान भी जा सकती थी। उन्हें खुद आकर सार्वजनिक रूप से पॉल से माफी मांगनी पड़ी। ये घटना गहराई से दिखाती है कि कैसे शुरुआती समुदाय ने सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी स्तर पर भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया।
आहा, इसी दौरान डॉक्टर हार्मन ने एक बहुत ही बारीक साहित्यिक रहस्य की ओर भी इशारा किया है। वो ऐतिहासिक किताब जिसमें ये सब दर्ज है, उसके लेखक की मौजूदगी के बारे में।
हाँ, ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों को लिखने वाले लेखक आमतौर पर अपनी कहानी वे या उन्होंने जैसे शब्दों के साथ सुनाते हैं, लेकिन एक्ट्स की इस किताब में एक अजीब बात होती है।
सर्वनाम बदल जाते हैं ना?
बिल्कुल। जब वो मैसेडोनिया की यात्रा शुरू करते हैं तो लेखक अचानक हम वहां गए या हमें ये मिला लिखने लगता है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि लेखक खुद उस यात्रा का हिस्सा था।
और जब पॉल फिलिपी से आगे निकल जाते हैं,
हाँ,
तो लेखक का सर्वनाम वापस बदल जाता है।
हाँ, सर्वनाम वापस वे हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये निकाला जाता है कि दस्तावेज को लिखने वाले ल्यूक, जो एक चिकित्सक और इतिहासकार थे, वो शायद फिलिपी में ही रुक गए थे।
शायद उनका मकसद इस नए छोटे से समुदाय को एक मजबूत आधार देना था, ताकि पॉल के जाने के बाद भी वो लोग टिके रहें।
एकदम सही।
तो ये थी उस समुदाय की उथल पुथल भरी शुरुआत। एक अमीर व्यापारी, एक आजाद हुई गुलाम लड़की, एक क्रूर रोमन जेलर और एक इतिहासकार। अब कहानी में लगभग 10 साल आगे चलते हैं।
60 से 62 के आसपास।
हाँ, अब पॉल रोम में नजरबंद है। तो ये समुदाय जो इतनी मुश्किलों से बना था, एक दशक बाद कैसा दिख रहा है?
इन 10 सालों में वो छोटा सा समूह अब एक काफी परिपक्व संस्था बन चुका था। उनके पास अब आधिकारिक रूप से समुदाय की देखभाल करने वाले प्रशासक यानी ओवरसियर और डीकन बन चुके थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका दिल खोलकर दान करना बन गया था।
दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने कई बार पॉल के काम के लिए आर्थिक मदद भेजी थी।
बिल्कुल, और इसी उदारता का एक बड़ा उदाहरण इफ्रोडाइटस की कहानी है।
इफ्रोडाइटस, वो फिलिपी के समुदाय का ही एक सदस्य था ना?
हाँ, जब उन्हें पता चला कि पॉल रोम में कैद हैं, तो उन्होंने पैसे और जरूरत का सामान देकर इफ्रोडाइटस को रोम भेजा। उस जमाने में ये कोई आसान काम नहीं था।
मीलों का लंबा सफर, लुटेरों का खतरा, मौसम की मार,
और इफ्रोडाइटस रोम पहुंचते पहुंचते इतना बीमार पड़ गया कि उसकी जान पर बनाई थी। ये दिखाता है कि ये समुदाय अपने नेता के लिए किस हद तक जा सकता था।
लेकिन डॉक्टर हार्मन ये भी स्पष्ट करते हैं कि सब कुछ एकदम आदर्श नहीं था। किसी भी इंसान से बने समूह की तरह वहां भी कुछ दरारें आ रही थीं।
हाँ बिल्कुल। पॉल ने अपने पत्र में दो प्रमुख महिलाओं का सीधे नाम लिया और उन्हें अपनी आपसी दुश्मनी खत्म करने को कहा।
ये बहुत चौंकाने वाला है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज में सरे आम किसी का नाम लेकर उसे टोका जा रहा है। पॉल के पत्रों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।
ये कदम उठाना पॉल के लिए भी एक बड़ा फैसला रहा होगा। जब किसी सार्वजनिक पत्र में दो लोगों का नाम लेकर उनके झगड़े का जिक्र किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्तिगत मतभेद इतना विशाल हो चुका था कि वो पूरे समुदाय के साझा उद्देश्य को ही निगल रहा था।
और इसके अलावा समुदाय पर बाहरी आर्थिक और सामाजिक दबाव भी तो बढ़ रहा था।
हाँ, और सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से था जिन्हें पॉल ने क्रॉस के दुश्मन कहा है।
तो ये क्रॉस के दुश्मन कौन थे? क्या ये कोई हिंसक हमलावर थे जो उन्हें मारना चाहते थे?
नहीं नहीं, ये कोई शारीरिक हमलावर नहीं थे। ये वो लोग थे जो समुदाय के अंदर ही गलत शिक्षाएं फैला रहे थे। वो समझा रहे थे कि शारीरिक सुख और पुराने बाहरी रीति रिवाजों का पालन करना ही सबसे जरूरी है।
अच्छा, तो वो इस नए समुदाय की बुनियाद को हिला रहे थे।
बिल्कुल। जो बुनियाद त्याग और विनम्रता पर टिकी थी, उसे वो वैचारिक रूप से खोखला कर रहे थे।
और इन्हीं सब समस्याओं को सुलझाने के लिए पॉल ने ये पत्र लिखा, लेकिन जिसका मुख्य स्वर अजीब तरह से आनंद और खुशी का है। मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ जिससे हमने शुरुआत की थी,
विरोधाभास वाला सवाल।
हाँ, एक आदमी मौत के इंतजार में बैठा है, उसके द्वारा बनाया गया समुदाय अंदरूनी झगड़ों और बाहरी दुश्मनों से जूझ रहा है, फिर भी वो आनंद की बात कैसे कर सकता है? क्या ये महज एक झूठा दिलासा था?
देखिए, ये कोई झूठा दिलासा या आज के दौर की सतही टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं थी। पॉल जिस आनंद की बात कर रहे थे, उसका स्रोत बाहरी घटनाओं में नहीं था। डॉक्टर हार्मन इसे सही मानसिकता या प्रॉपर माइंडसेट कहते हैं।
मतलब ये सोचने का कोई नया तरीका था?
हाँ, पॉल समझाते हैं कि जब आप खुद को एक बहुत बड़ी ईश्वरीय कहानी का हिस्सा मान लेते हैं, तो आपकी अपनी छोटी मोटी तकलीफें या अहंकार बहुत छोटे हो जाते हैं। ये मानसिकता सिर्फ दुनिया को देखने का नजरिया नहीं है, ये एक सक्रिय अभ्यास है।
और इसी मानसिकता को गहराई से समझाने के लिए उन्होंने उस पत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता या भजन शामिल किया, जिसे मसीह का भजन या क्राइस्ट हाइम कहा जाता है।
ये दूसरे अध्याय में है और इसे पूरे पत्र का धड़कता हुआ दिल माना जाता है। ये भजन ईसा मसीह के जीवन के सबसे गहरे दर्शन को सामने रखता है।
हाँ, मैंने पढ़ा है। ये बताता है कि कैसे जीसस ने अपनी सर्वोच्च शक्ति और स्थिति को त्याग कर एक साधारण सेवक का रूप धारण किया।
बिल्कुल, पॉल फिलिप्पी के उन लड़ते झगड़ते लोगों से ये कह रहे थे कि जरा सोचो, जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो, उसने अपना रुतबा छोड़ दिया और तुम लोग अपने छोटे छोटे अहंकारों के लिए लड़ रहे हो।
ये तो मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। मतलब जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने अधिकारों, अपने अहंकार और अपनी तकलीफों पर होता है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते।
एकदम सही।
लेकिन जब आप दूसरों को खुद से ऊपर रखने की मानसिकता अपनाते हैं, तो आपका दिमाग आपकी अपनी तकलीफों से हट जाता है। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल रीवायरिंग है।
और इसी वैचारिक बदलाव के साथ पॉल उन्हें न्याय और उम्मीद की एक नई दृष्टि भी देते हैं। वो ईसा मसीह के दिन यानी डे ऑफ क्राइस्ट की बात करते हैं।
ये पुराने प्रभु के दिन से अलग कैसे था?
पुराने यहूदी ग्रंथों में प्रभु का दिन हमेशा एक खौफनाक न्याय का दिन माना जाता था, जहां सजा मिलनी तय थी। लेकिन पॉल ने उसे एक ऐसे दिन में बदल दिया जो उम्मीद से भरा था। उन्होंने कहा कि जो अंतिम न्याय होगा वो ईसा मसीह के हाथों होगा, जिन्होंने खुद अन्याय सहा था।
ये उन लोगों के लिए कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत रही होगी, खासकर उनके लिए जो लगातार समाज में आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न झेल रहे थे।
हाँ, उन्हें ये पक्का भरोसा दिलाया गया कि अंत में सब कुछ ठीक होगा और सच्चा न्याय मिलेगा।
और दिलचस्प बात यह है कि पॉल ने ये सब समझाने के लिए पुरानी यहूदी कथाओं यानी ओल्ड टेस्टमेंट का बहुत चतुराई से इस्तेमाल किया, वो भी तब जब फिलिपी में यहूदी लोग थे ही नहीं।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। पॉल असल में उन गैर यहूदी लोगों को एक नई ऐतिहासिक पहचान दे रहे थे।
मतलब उन्हें जड़ों से जोड़ रहे थे।
बिल्कुल, वो समझा रहे थे कि तुम लोग कोई अचानक से पैदा हुआ नया गुट नहीं हो, तुम उस लंबी हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक श्रृंखला का हिस्सा हो जो सीधे ईश्वर से जुड़ी है। ये उन्हें ये एहसास दिलाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका था कि वो अकेले नहीं है।
क्या बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हम देखते हैं कि कैसे एक ईश्वर द्वारा रोके जाने के हताश करने वाले पलों से शुरू हुआ एक सफर एक अजनबी शहर की नदी के किनारे तक पहुंचता है।
हाँ, और वहां से वो एक अमीर महिला, एक शोषित लड़की और एक क्रूर जेलर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है।
और फिर एक दशक बाद वही लोग एक ऐसे समुदाय में बदल जाते हैं जिसे इतिहास का सबसे खूबसूरत आनंद से भरा पत्र मिलता है।
और जानते हैं, ये संदेश आज के हमारे जीवन में भी उतनी ही जोर से गूंजता है।
बिल्कुल,
आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां सूचनाओं का अंबार है, हम लगातार बेहतर सुविधाओं, बेहतर करियर और ज्यादा सुरक्षा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तनाव और अवसाद का स्तर इतिहास में कभी भी इतना ज्यादा नहीं रहा।
सच में, ये ऐतिहासिक दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि गहरी खुशी और जीवन का अर्थ कभी भी हमारी बाहरी आरामदायक स्थितियों में नहीं मिलता।
एकदम सही।
और यही बात एक बहुत गहरे विचार को जन्म देती है। सोचने वाली बात है कि पॉल उस कालकोठरी में खुश थे जबकि आज इतनी सुख सुविधाओं के बीच भी बेचैनी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के आधुनिक युग की ये सारी बाहरी सुविधाएं ही असली खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हो?
हाँ, बहुत मुमकिन है।
क्या शायद इंसानी स्वभाव की संरचना ही ऐसी है कि जीवन के सबसे गहरे मूल्य, सबसे सच्ची खुशी और इंसानियत भारी संघर्ष और अभाव के अंधकार में ही सबसे ज्यादा निखर कर सामने आती हैं। क्या महज इसलिए अंदर से खालीपन है क्योंकि कभी उस तरह से टूटने का मौका ही नहीं मिला जिस तरह से वो जेलर टूटा था? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर लंबे समय तक चिंतन किया जा सकता है।
सच में ये एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला विचार है।
तो आज के इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं, उस अंधेरी जेल और उन टूटती हुई जंजीरों की गूंज के साथ जहां से खुशी का असली अर्थ बाहर निकला था।